Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसलिए वो बात छोड़ दो. तो देवयान, हिरण्यगर्भ उपासक देवयान अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंचते हैं. और ये कहा गया है कि ब्रह्मलोक में जब महाप्रलय की अवस्था आती है तो उस ब्रह्मा को लक्ष्य करके परमात्मा तत्व का उपदेश करते हैं. उस समय में उस ब्रह्मलोक में रहने वाले जीवों को भी वह श्रवण करने को मिल जाता है और उसके बाद वह मुक्त हो जाते हैं. ये वेदांत की चर्चा, वेदांत ने इसको क्रम मुक्ति कहा. परंतु ये जो क्रम मुक्ति है वह दीर्घ कालापेक्षित है, वह बहुत समय के बाद मुक्त होने वाली मुक्ति है. ये कहां कल्प तक प्रतीक्षा करने पड़ेगा ब्रह्मलोक में भी मुक्ति के लिए. तो ये क्रम मुक्ति. दूसरा है ये जो देवयान की प्राप्ति है मार्ग, क्रम मुक्ति यानी अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति है जीवात्मा को, वह तो उपासना के माध्यम से प्राप्त होगा. दूसरा यान है, दूसरा मार्ग है पितृयान. उसको पितृयान के रूप में कहा गया है. धूमो रात्रि तथा सन्मासा दक्षिणायनम, ये पितृमार्ग है. ये पितृमार्ग चंद्रलोक पर्यंत पहुंचता है. चंद्रलोक माने स्वर्गलोक पर्यंत पहुंचता है पितृमार्ग. तो ये धूम मार्ग के माध्यम से जाता है. और जैसे कि ब्रह्मसूत्र आदि में चर्चा की गई है, उपनिषदों में कहा गया है, वहां उस कर्मफलों को भोग कर वह फिर यहां आता है. उसी तरह धूम के माध्यम से, वृष्टि के माध्यम से इसी लोक में आता है. जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से लौट कर आता है. ये पितृयान, पितृमार्ग, स्वर्ग जाने का मार्ग. तीसरा है जन्म और मृत्यु, जायस्व म्रियस्व. यही जन्मेगा, यही मरेगा, यही जन्मेगा और यही मरेगा. उसको कहते हैं अनुसय. अनुसय जैसे आपके घर में मच्छर हो और वह मच्छर आपके गाल में बैठकर लोही चूस रहा था, रक्त चूस रहा था, आपको पता चला, आपने जोर से थप्पड़ मारी और वो मर गए. वो न पितृयान से जाएगा पितृलोक देवलोक, न ज्योतिर्मार्ग से जाएगा. वह तुरंत कालांतर में मच्छर योनि की उसकी समाप्ति हो गई, फिर योनि अंतर की, पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा वो है, पता नहीं किसी और योनि में जाए, किसी भी योनि में, चींटी की योनि में जा सकता है, मक्खी की योनि में जा सकता है, क्योंकि मच्छरों के बाद फिर मक्खी, मक्खी के बाद मच्छर, ये सब संभव है. चींटी के बाद मच्छर, मच्छर के बाद चींटियां, यही इसको बोलते हैं जायस्व म्रियस्व. वे यही मरते रहेंगे, यही जन्म लेंगे, यही मरते रहेंगे, यही जन्म लेंगे. इन तीन मार्गों को संकेत किया है इस श्रुति के द्वारा. जीवात्मा अपने कर्म और वासना के अनुरूप उपासना के माध्यम से वह ब्रह्मलोक जाएगा. वो एक वर्तमान हो गया, एक मार्ग हो गया. कर्मों के माध्यम से शास्त्र विहित इष्ट आदि कर्मों के माध्यम से वह पितृलोक की यानी धूम मार्ग से वह स्वर्गलोक जाएगा. और बाकी कर्मों के चलते उसको यही लोक माने योन्यंतर की प्राप्ति होगी. लोकांतर की नहीं, योन्यंतर की प्राप्ति होगी. इसलिए निष्काम कर्म उपासना, सकाम कर्म इष्टपूर्त दत्त, और निषिद्ध कर्म चोरी चकारी आदि, सब व्यभिचारी दुराचार आदि, ये सब के द्वारा क्या होता है, जीव मनुष्य भी यदि निषिद्ध कर्मानुष्ठायी होगा वह ये दो मार्गों में प्रवेश ही नहीं करेगा, वह यहां मर के यही वह कपुयाचरणी वह सुकर कुकर योनि में जाएगा। इसके बारे में बहुत सुंदर ब्रह्मसूत्र में चर्चा है, आज के प्रसंग बड़ा सुंदर है ब्रह्मसूत्र का। गुणान भयो यह फल कर्म करता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूप त्रिगुण स्त्रिवात्मा प्राणाधिपः। वह प्राण का अधिपति है। यहां प्राण शब्द से उपलक्षित है, प्राण शब्द का अर्थ सूक्ष्म शरीर का अधिपति है। संचरति स्वकर्म भी ही, वह प्राणाधिप होकर प्राण का स्वामी प्राण का मालिक होता हुआ, सूक्ष्म शरीर का स्वामी सूक्ष्म शरीर का मालिक होता हुआ वह संचरति, स्वकर्म भी ही संचरति, अपने कर्म और अपनी वासना के अनुसार वह संचरण करता है। प्राणाधिपा सन संचरति, इसी को गीता में ये कह दिया है, मन सष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान निकर्षति। वो प्राणाधीप है, प्राण का मालिक है, इसलिए वह अपने वस्तुओं को वह अपने साथ ही लेकर विचरण करता है। स्थूल शरीर का मालिक यह नहीं है। यदि स्थूल शरीर का मालिक ही होता तो स्थूल शरीर पर यह पूरा का पूरा नियंत्रण रख पाता। जीवात्मा स्थूल शरीर का मालिक नहीं है, इसीलिए स्थूल शरीर जीवात्मा के नियंत्रण में नहीं है, आपके नियंत्रण में है आपका शरीर, आपके बस में है आपका शरीर। यदि आपके नियंत्रण में आपके बस में होता तो आप जैसा चाहते वैसा बनाते रहे और जैसा चाहते वैसा रखते। हम किसी को कहते हैं अरे भाई तुम तो बहुत मोटे हो गए, क्या करें महाराज शरीर बढ़ता जा रहा है, तो हम कहते हैं इसको थोड़ा कम करो। बोले कम क्या करें महाराज, बहुत थोड़ा खाते फिर भी घटता नहीं, तुम्हारे अधीन में होता तो घट जाना चाहिए था, तुम्हारे अधीन में तो है ही नहीं। परंतु सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर उस जीवात्मा के अधीन है। अधीन इसलिए है कि वह जीवात्मा अपने साथ जहां जाता है वहां ले जा सकता है। मन सष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान निकर्षति, ये जीवात्मा शरीरम यद अवाप्नोति यच्याप्युत्क्रामति ईश्वरः, वहां जो ईश्वर पद आया है, शरीरम यद अवाप्नोति यच्च उत्क्रामति ईश्वरः, वो जो ईश्वर है उसी को इस श्रुति ने गीता में वहां ईश्वर जो कहा था 15वें अध्याय में श्लोक में, वो जीवात्मा के लिए कहा, और वही ईश्वरता यहां प्राणाधिपः ये शब्द से संकेत कर दिया है। यहां जिसको प्राणाधिप करके कहा है ये भी जीवात्मा के लिए कहा, सूक्ष्म शरीर का मालिक, उसी तरह वहां ईश्वर करके अर्जुन को समझाया। वह प्रकृतिस्थ यानी स्थूल शरीर में विद्यमान उस प्राण उपलक्षित समस्त सूक्ष्म शरीर को मन सहित छह इंद्रिय, मन है छठा, ऐसे सभी इंद्रियों को प्राण के सहित प्रकृतिस्थ स्थूल शरीर में रहने वाले उस सूक्ष्म शरीर को निकर्षति, वह खींच लेता है, निकाल लेता है, इसमें से निकाल लेता है। जैसे कोई पुराना घर किसी बिल्डर में खरीद ली और उसमें नया मकान बनाना है, पहले से रहने वाले मकान के उसमें रहने वाले मालिकों को घर वालों को वो कहता है कि ये मकान अब टूटने वाला है, तुम इतने दिन के अंदर इस घर को खाली कर लो। बिल्डर कहता है जब, तब जाकर फिर वो अपने सारे सामानों को निकालना शुरू करता है। धीरे धीरे सभी वस्तुओं को निकाल लेता है, बाहर रख लेता है और दूसरा भाड़े का मकान खोज लेता है, क्योंकि आगे तो बिल्डर उसी में ही फ्लैट बनाकर देगा नया। आपको ये दृष्टांत क्योंकि बंबई वासी हो इसलिए समझ में आ जाएगा जल्दी, और लोगों को नहीं समझ में आने वाला ये, क्योंकि अन्यत्र ये होता ही नहीं है, खाली बंबई में ही होता है ये, इसलिए बंबई वालों को ये समझ में आ जाएगा दृष्टांत। क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि और दूसरा मकान या नया मिलने वाला है, थोड़े दिन के लिए टेम्पररी किसी भाड़े का मकान ले लो, फ्लैट ले लो, वहां चले जाओ। तो वो सारा सामान उस भाड़े के मकान को फिक्स करता है, फिर इधर से सामान निकालता है, निकालकर उसी भाड़े के घर में ही फिट करता है और वहां भोगता है, प्रतीक्षा करता है कि बिल्डर कब नया फ्लैट बनाएगा, कब बनाएगा, कब बनाएगा। जब बन जाता है तब पोजीशन देता है, तो फिर वही सामान लेकर फिर यहां आता है, फिर वही सामान जो वहां उपभोग करता था उसी को लेकर आएगा, फिर यहीं ला के फिट करेगा, फिर यहां नया मकान में। जीवात्मा ऐसा ही करता रहता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी, उत्क्रामंतम स्थितम वापी, इसी को कहते हैं स्थूल शरीर से निकलने से पहले जीवात्मा को टेम्प्रवरी शरीर प्राप्त होता है। वो टेम्प्रवरी शरीर का नाम है आतिवाहिक शरीर, टेम्प्रवरी। दूसरा शरीर जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक के लिए इस वर्तमान स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर स्थूल प्राप्त जब तक नहीं होगा, उसके बीच के जो पीरियड है उस पीरियड में ये सभी सूक्ष्म शरीर के अवयवों को सुरक्षित रखने के लिए और अपने अपनी वहां रहने के लिए एक आतिवाहिक शरीर खड़ा होता है। वो आतिवाहिक शरीर में इस शरीर में से सारे साधनों को निकालकर उसमें लेता है और खुद भी उसमें बैठ जाता है और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भ्रमण आदि करने का मूल साधन है आतिवाहिक शरीर। और उस आतिवाहिक शरीर में रहने के बाद उसके कर्म और वासना के अनुसार जब उसका दूसरा शरीर, चाहे वह मनुष्य का हो, चाहे कीट पतंग का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, यदि उसको देव योनि में जाना है तो उसी आतिवाहिक शरीर में रहकर धूम मार्ग से पितृलोक को जाएगा, और यदि उसको क्रम मुक्ति से जाना हो तो उसी आतिवाहिक शरीर से अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा। ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद उसको दूसरा शरीर मिलेगा, आतिवाहिक शरीर नष्ट हो जाएगा। धूम मार्ग से जब देवलोक जाता है, यानी अर्चिरादि धूम मार्ग से जब स्वर्ग में प्रवेश करता है, तो स्वर्ग में प्रवेश करते ही उसको दूसरा देवता का शरीर प्राप्त होगा, आतिवाहिक शरीर नष्ट हो जाएगा। और फिर इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में जाना होता है, तब इस शरीर से निकलता है, आतिवाहिक शरीर में प्रवेश करता है, आतिवाहिक शरीर में रहता है। कब तक? तो जब तक दूसरा शरीर उसके प्रारब्ध वासना के अनुसार प्राप्त होना निश्चित नहीं हो जाता तब तक आतिवाहिक में रहता है। जब उसके कर्म अनुसार उसको ये शरीर ले, ये सुअर का शरीर है, ये कुत्ते का शरीर है, तेरे लिए ते इसमें घुस जा, तब फिर उसके आतिवाहिक शरीर तुरंत खत्म हो जाता है। फिर इन्हीं साधनों को लेकर, इन्हीं सूक्ष्म शरीर को लेकर कुत्ते में घुसता है, सुअर में घुसता है, मनुष्य में घुसता है, हाँ। आप यूं समझ लेना, आप अभी मनुष्य हो, कदाचित तुम्हारी वासना और तुम्हारा कर्म ऐसा है। हालांकि प्रेमपुरी आ जाने के बाद यह कल्पना करना ही गलत है, ये गारंटी है। यदि हाँ प्रेमपुरी आ चुके हो तो ये कल्पना करना ही नहीं, करना ही गलत है, संभव ही नहीं है। ये सारी कल्पना तो उनके लिए है जो प्रेमपुरी जानते ही नहीं, ये तो उसके लिए है कि सत्संग जानते नहीं, वेदांत नहीं जानते, श्रवण मनन नहीं जानते, अध्यात्म नहीं जानते, केवल मनुष्य होकर पैदा हुए परंतु संसार के विषयों में ही आसक्त है, लंपट है, मांस मदिरा मद्य में ही पंचमकार में ही आसक्त हैं, ये उन लोगों के लिए ये बिल्कुल सत्य है। मनुष्य के रूप में रहता था वो विषय आसक्त था, मरकर उसको कुत्ते की योनि में जाना है, तब उस शरीर से मरकर वो आतिवाहिक शरीर में घुसेगा, फिर आतिवाहिक शरीर से कुत्ते के शरीर में जाएगा। मान लो उसको मच्छर के शरीर में जाना है, देखो भाई हम तो ये कह रहे हैं, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, दादा गुरु, गुरु भी नहीं, दादा गुरु, गुरु के गुरु हमेशा कहा करते थे, देखो तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ वेद और वेदांत दर्शन में विश्वास करके तुम वेदांत श्रवण करने के लिए आ गए और बैठ गए इस वेदांत श्रवण करने, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम मच्छर होगे ये कल्पना नहीं करना, ये तो कल्पना करनी बेकार है। मरने के बाद फिर कुत्ते होगे, मरने के बाद फिर सुअर होगे, मक्खी होगे, मच्छर होंगे, कॉकरोच होंगे, ये तो कल्पना ही नहीं करना। हां, इतने हो जाने के बाद दो विकल्प हैं, यदि तुम्हारी साधना में बहुत तीव्रता होगी तो संभव है कि तुम यहीं जीवन मुक्त हो जाओ, संभव है कि यही जीवन मुक्त हो जाओ। यदि कदाचित जीवन मुक्त भी नहीं हो सके और साधना तुम करते रहे तो संभव है कि तुमको क्रम मुक्ति अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति और कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो क्रम मुक्ति होगी। यदि कदाचित वो भी नहीं हो सका तब तुम जो सत्कर्म कर रहे हो, यहां आश्रम में आते हो, आश्रम के माध्यम से सत्कर्म करते हो, उन सब सत्कर्मों के चलते धूम मार्ग से तुम पितृलोक जा सकते हो, यानी स्वर्ग जा सकते हो। तो ये कल्पना ही नहीं करना कि यहां मरने के बाद कुकर सुकर योनि में जाएगा, और कदाचित तुम स्वर्ग भी जा नहीं पाए, तो इतना तो गारंटी है, कहते थे हमारे दादा गुरु जी, इतना तो पक्का गारंटी है तुम मरकर फिर अच्छे मनुष्य ही बनोगे, ये गारंटी पक्का है, दूसरे योनि तुमको प्राप्त नहीं होने वाला है। यही है, इसलिए तीन विकल्प हैं, एक का तो कोई मार्ग ही नहीं है, जीवन मुक्ति कोई मार्ग नहीं है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते, जीवन मुक्त हुआ हुआ पुरुष वह उत्क्रमण करके किसी मार्ग का अवलंबन नहीं करता है, क्योंकि उत्क्रमण के उसके जो साधन है, सामग्रियां हैं, वो सब कुछ यहीं विलीन हो जाते हैं, प्रारब्ध समाप्त तो होते ही अवशेष नहीं रहते हैं, तो फिर उत्क्रमण करने का कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए कोई मार्ग नहीं पकड़ता वो जीवन मुक्त पुरुष। बाकी तीन मार्ग हो गए, क्रम मुक्ति का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग, और इसी मर्त्यलोक में उत्पन्न होना और मरना। प्राणाधिपा संचरति स्वकर्म भी, वो प्राण का मालिक, प्राण का अधिपति, स्वकर्म भी ही अपने कर्म, उपासना और वासना, उपासना कर्म और वासना, कर्म वासना की एकता है, उपासना की साथ कर्म वासना का मेल नहीं है, उपासना अलग है, उपासना का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, कर्म और वासना का मेल है, कर्म का फल है पुण्य कर्म शास्त्र विहित कर्म का फल स्वर्ग है, और निषिद्ध कर्म और तदंजन्य जो विषयों की आसक्ति वह मृतलोक में ही योन्य अंतर की प्राप्ति, ये त्रिवर्तम है, स्वकर्म भी संचरति। ये सुनने का क्या फायदा होगा आपको, अल्लाह अब बताओ, इतने सुन रहे हो, ध्यान देकर सुन रहे हो, सुनने का फायदा क्या होगा, है? कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, तो ये निश्चय हो जाएगा कि सगभर तो कोई कर्म और कोई वासना नहीं होनी चाहिए, ये निश्चय होगा तुम्हें, और सबवर कोई कर्म कोई वासना न हो और चित्त शुद्धि द्वारा तत्व निश्चय हो जाए और जीवन मुक्ति की प्राप्त हो जावे, ये इच्छा जग जाएगी, ये इच्छा तीव्र होती जाएगी। ये सुनने का एक फल है। दूसरी बात, कदाचित यदि जीवन मुक्त यही जीवन मुक्त हो नहीं सका तो कम से कम क्रम मुक्ति के मार्ग से मैं जाऊं और कालांतर में मैं मुक्त हो जाऊं। दूसरा विकल्प ऑप्शन आपके सामने रहेगा, वो भी दूसरा विकल्प है। और तीसरा विकल्प है कि चलो कम से कम स्वर्ग तो भोगने को मिल जाएगा, यहां दुख पाया तो पाया, स्वर्ग में तो सुख मिल जाएगा। और चौथा विकल्प क्या है, कम से कम मर के मैं पुनः अच्छे संपदा से युक्त, अच्छे साधन से युक्त, अच्छे कुल घराना और खानदान के घर में, संस्कारवान परिवार में मेरा जन्म होगा। इतनी निष्ठा, इतने विश्वास आपके हृदय में पक्का हो जाएगा, होगा कि नहीं? और यदि नहीं होता है तो यह प्रसंग सुनने का कोई प्रसंग ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारे स्वरूप बता रहे हैं, स्वरूप क्या, रूप ही है, यह भी स्वरूप तो नहीं कहे। अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः, तुम कितने बड़े हो इस शरीर में। कोई व्यक्ति ये शब्द प्रयोग न करे, तुम्हारी मोटाई लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो फट से वो कहेगा कि 5.5 फुट, 7 फुट, 6 फुट, है ना, यही बताएगा। हमारे जैसे ठीक नहीं होंगे तो 5 फुट होगा, गिरीश भाई जैसे होंगे तो 6.5 फुट, 6 फुट होंगे, है ना। गिरीश भाई तो बड़े हाइट है गिरीश भाई की, सब लोग ये बताएंगे। लेकिन ये तुम्हारा जीव का ये हाइट नहीं है, ये शरीर की हाइट है, जीव का नहीं है, जीव का माप नहीं है ये। अब रही बात जीवात्मा कितना बड़ा है, इतने बड़े शरीर में जीवात्मा कितना बड़ा है, श्रुति ने माप बता दिया है, अंगुष्ठ मात्र, आपका अंगूठा जितना बड़ा है जीवात्मा उतना ही बड़ा है। ये जो कहा गया जीवात्मा इतना बड़ा है, वो जीवात्मा के लिए नहीं कहा, जीवात्मा की अभिव्यक्ति का जो उपाधि है हृदय, जिस हृदय में जीवात्मा व्यक्त होता है, वो हृदय का परिमाण अंगुष्ठ के बराबर है। और ये हृदय सर्जन को जो हृदय मिलता है वो हृदय नहीं है, सर्जन को जो हृदय है ऑपरेशन करके जो निकालते हैं, है ना, जिसको अंग्रेजी में आप लोग हार्ट कहते हो, है वो हृदय नहीं है। ये हृदय तो 5 छिद्र वाला है, और वो तो एक फुटबॉल के अंदर का जो हवा भरने का जो ब्लैडर होता है उतना ही बड़ा है ना, है भी वो स्पंद होता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। ये हृदय की चर्चा यहां नहीं है, ये आध्यात्मिक हृदय है, ये अति सूक्ष्म है। फिर भी उसको ये कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्र, हृदय के परिमाण को लेकर उस आत्मा का परिमाण बता दिया। स्थूल शरीर में जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र है, और कैसा है, बोले रवितुल्य, लेकिन प्रकाश स्वरूप वाला है, रवितुल्य। जैसे सूर्य जब भी प्रकाशित होगा प्रकाश उसमें रहेंगे, प्रकाशतुल्य। संकल्पाहंकार समन्वितो यह, स्थूल शरीर में जब तक जीवात्मा रहेगा अंगुष्ठ परिमाण का रहेगा, रवितुल्य रहेगा, और संकल्प और विकल्प करता हुआ अहंकार से युक्त होता हुआ रहेगा वो जीवात्मा। ये सामान्य जीव की चर्चा है, हाँ, मुक्त जीव की चर्चा नहीं, जीवन मुक्तों वालों की चर्चा नहीं है। जीवन मुक्त को तो जीव पना ही नहीं है, तो वहां अंगुष्ठ मात्र की बात नहीं है, संकल्प विकल्प और अहंकार से युक्तता की बात नहीं है। समन्वितो यह बुद्धिर्गुणेनात्म गुणेन चैव आराग्र मात्रो यपरोपि दृष्टः। दूसरी बात, सूक्ष्म शरीर में ये जीवात्मा आराग्र भाग परिमाण का है। आप लोगों ने आरा दिखा है ना, लकड़ी चीरने का आरा। आपके घर में जो सुतार लोग आते हैं, छोटे छोटे आरा लेकर आते हैं, और बड़े बड़े सौ मील में बड़े बड़े आरे होते हैं, और घर में आने वाले सुतार लोगों के पास छोटा छोटा आरा होता है, तो लकड़ी काटने का। तो आरा का जो अग्रभाग नोक है, उसको देखा कितना सूक्ष्म है। तो दूसरा आपका परिमाण आराग्र भाग का परिमाण है। अपरोपी दृष्ट, उसके अलावा और भी तुम्हारा परिमाण है। स्थूल शरीर में अंगुष्ठ परिमाण का, भावना शरीर में आराग्र भाग परिमाण का, और कारण शरीर में आप कितने बड़े हैं, कारण शरीर में आप कितने बड़े हैं, ये कल बताएंगे। समय क्योंकि 34 हो गया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।